اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بی عدد کل ذرت میت الفاظ مرتین، سورہ بقرہ آیت نمبر 275.
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأن
کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مقبوض بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے.
اچھا یہ اب آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، اس سے پہلے جتنے بھی وہ آیتیں آئیں، صدقات خیر خیرات کے بارے میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 274 آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ جینا ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مال رات دن ظاہر اور چھپے ہوئے اور ظاہر دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کا نہ وہ غمزدہ ہوں گے اور نہ وہ خوفزدہ ہوں گے، اندیشہ ہوگا کسی چیز کا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ایسا. لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے ایسا مال جو ہمیں تباہ کر دیتا ہے، قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ جی نے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ جی نے یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، اس کی مثال ایسی اللہ کہہ رہا ہے لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس کی مثال ایسی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جن نے چھو لیا ہے یا ان پر جن آ گیا ہے. یہ کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالو، کیوں کہ وہ کہتے ہیں انما بے جو مثل الربا، خرید جو ہے، نفع جو ہے وہ بالکل یہ جو سود ہے بالکل اس کے نفع کی طرح ہے، جیسے ہم تجارت کرتے ہیں اس میں نفع ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک تجارت ہے، تو اس میں جو ہم پیسے لیتے ہیں یہ بھی ایک نفع ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ احل اللہ البیع، اللہ کہتا ہے میں نے حلال کر دیا ہے خرید و فروخت، وہ حرم البیع ربا، لیکن سود لینا حرام کر دیا ہے. فمن جاؤ موعظۃم من ربہ، بس جو اس کے پاس نصیحت آ گئی یعنی جس نے نصیحت مان لی، فانتہا اور رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس نے جو اس سے پہلے عمل کیا تھا اس کا उसे पुरस्कार नहीं होगी या सजा नहीं होगी, वो ख़त्म हो गया। वह अमरहु इल्लल्लाह, अब उसका मामला अल्लाह के पास है। वो मन आदा फौलाए का साहब नार, और जो दोबारा यानी उसने दोबारा सूद खाया या सूद लिया, तो अल्लाह कहता है ऐसे लोग आग में होंगे और हमेशा रहेंगे। अब हमें समझना है सूद है क्या चीज़। सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ समझनी है कि सूद क्या चीज़ है। सूद एक ऐसी चीज़ है, सूद के आप किसी को रकम दें और आप कर्ज रकम दें और आप उस पर कुछ मुयन कर दें कि वो मेरी असल रकम भी रहेगी, लेकिन तुम इस पे जैसे मसलन 10,000 दिया तो कहेंगे कि नहीं 1,000 रुपये तुम महीना दोगे। जैसे बैंक है, सारे बैंक हैं, तो अगर ये सूद है, लेकिन अब दूसरी क्या है, बै क्या है यानी खरीदो फरोख क्या, उसमें है नफ़ा नुकसान, यानी अगर नफ़ा हुआ है तो नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। इसमें वो अपनी असल रकम पड़ी हुई है और हम उस पर पैसा कमा रहे हैं। सारी दुनिया में सारे मुसलमान सूद का कारोबार है, सब हुकूमती सतह पे, लोकल तो होगा निचली सतह पे, लेकिन हुकूमती सतह पे ये सूद का सारी दुनिया में है। तो अब अल्लाह ताला को है, ये अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि नहीं, ये ऐसे नहीं करना, इस तरीके से नहीं लेना। तो अब बहैसियत मुसलमान मुझे समझना है इस चीज़ को कि मैं सूद ना खाऊँ। क्यों? कि सूद खाने वाले की अल्लाह ने मिसाल पेश की है कि वो क़यामत के दिन ऐसे उठेगा कब्र से जैसे उस पर जिन आ गया है। अब आपने देखा होगा जिन पर जिन आते हैं उनकी हालत क्या होती है, वो क्या ऑल फॉल बक रहे होते हैं और क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं और उसमें नहीं होते, होश में नहीं होते खुद। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे वो क़यामत के दिन उठेंगे। आज अब फिर सूद जो है, जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया है तो उसका अखलाक़ी लिहाज से भी नुकसान है, मादी लिहाज से भी नुकसान है। मादी लिहाज से अगर थोड़ा फ़ायदा है, जैसे अब 100 रुपये का फ़ायदा है लेकिन 1,000 रुपये का नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान है रूह का। ये जिस्म जो है ये असल नहीं है, असल है रूह। हम जो अमल करते हैं वो उसका असर हमारी रूह पे जाता है। अब अल्लाह ताला ने सूद मना कर दिया लेकिन मैं सूद खा रही हूँ तो उसका सारा असर मेरी रूह पे जा रहा है। तो वो जब मैं रूह अल्लाह का हुक्म नहीं मान रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया अपने लिए, यहाँ ये एक इंतहाई समझने की चीज़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने लिए पैदा किया और फिर पैदा करने के बाद इंसान को अल्लाह ताला ने खुला नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा हिदायत मेरी तरफ से आएगी, यानी जो तुम ज़िंदगी गुजारोगे दुनिया में, जितना अर्सा तुम ज़िंदगी गुजारोगे वो तमाम हिदायत मैं तुम्हें दूंगा। एक एक चीज़ की मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम्हें नसीहत करूंगा, वसीयत करूंगा, सब कुछ करूंगा और हिदायत मेरी तरफ़ से आएगी। तो आप हिदायत का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने पैगंबरों के ज़रिए किया, आखिरी हिदायत रसूल पाक सल्लम हमारे पास आए कुरान। अब ये क्यों, ये हमारे लिए था, क्योंकि सारी कायनात जितनी भी है वो ऑलरेडी हिदायत याफ्ता है, उसको सब कुछ अल्लाह ताला ने बता दिया है, फीट कर दिया है, वो उस के मुताबिक चल रहे हैं। उसमें भी अल्लाह की ज़ाहिर है, वो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने ऐसा ही निज़ाम उनके लिए पैदा किया सारी कायनात, सिर्फ इंसान के लिए कि इंसान को सारी मखलूक से अफजल बनाया, अजीम बनाया, तो अल्लाह ताला ने उस पर ज़बरदस्ती नहीं ठूसी, लेकिन ये कह दिया कि देखो तुम्हें मैं अपने लिए पैदा कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद मैं होना चाहिए, मुझे पहचानो, मुझे जानो, अपनी ज़िंदगी को पहचानो कि तुम कौन हो और तुम्हें मैंने ये ज़िंदगी क्यों दी है, तुम्हें ये तमाम तुम्हारे जिस्म में आँख कान ज़बान हर कुछ जो दिया है ये किस लिए दिया है, किस मकसद के लिए दिया है, तुम्हारी तकदीर किसके हाथ में है, ये तमाम चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला, और तुम्हें मैंने अपने लिए पैदा किया है और जो तुम्हें अकल दी है वो भी मैंने तुम्हें अपने लिए दी है, मुझे जानो, मुझे पहचानो, और इसका और फिर कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तरीक़ा मैं बताऊंगा, हिदायत मैं दूंगा, वो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तरीक़े मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके लिए मैं बाकायदा पैगंबरों का मैं तुम्हें इंतज़ाम किया और आखिरी पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान। अब हर इंसान को ये हुक्म है कि वो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं, उनको मान के कुरान के मुताबिक। अब زبردستی نہیں کی, چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اگر زبردستی کرتا تو پھر تو فائدہ ہی نہیں تھا, لیکن اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تو سب تمہیں اپنی ہدایات سب بھجوا دی رسول کے ذریعے قرآن کے ذریعے, اب میں زبردستی نہیں کرا لیکن میں نے تمہیں بتا دیا اپنی مرضی اپنی منشا. میری منشا کائنات میں چل رہی ہے, تمہاری زندگی میں میری منشا میری مرضی چل رہی ہے. اب تمہاری مرضی ہے, تم میری منشا کو میری مرضی کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے, لیتے ہو کہ نہیں لیتے, زبردستی نہیں ہے. لیکن آؤ گے کہاں, میرے پاس آؤ گے, پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ میں نے تم جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا, میں نے تمہیں عقل دی تھی, آنکھ زبان دی تھی, ہاتھ پیر دیے تھے, صلاحیتیں دی تھی, میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا تھا اور قرآن دیا تھا, تم نے کیا لے کے آئے ہو؟ تو اب یہ ہے اصل چیز. اب ہم جو جس طریقے سے ہم پوری دنیا اور خاص طور سے ہم مسلمان جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. قرآن اصل ہے, اللہ کی مرضی اصل ہے, اسی کے مطابق سیاست بھی ہوگی, آپ کی دنیا آپ اس کے مطابق کرو گے, سیاست بھی اسی کے مطابق, عبادات بھی اس کے مطابق, ہر کچھ اس کے مطابق ہوگا. اب پاکستان کا مقصد کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ قرآن کے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جو اپنے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی. اب 70 سال ہو گئے ابھی تک تو نافذ نہیں ہوا, تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہم پہ, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جو فیصلہ میرا ہے, منشا میری چلی, ہر انسان کی زندگی میں اور کائنات میں مرضی میری چل رہی ہے, منشا میری چل رہی ہے. اگر تم میری مرضی لے لو گے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی, اگر تم مجھ سے میری مرضی سے ٹکراؤ گے تو تمہاری مرضی تو پوری ہوگی نہیں, میں تمہیں تباہ و برباد, اللہ تباہ و برباد کر دے گا, کیونکہ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ کی مرضی لینے میں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے میرے جسم کے لیے دنیا کے یہ اسباب پیدا کیے ہیں رزق کے لیے, اسی طرح میری روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا بندوبست کیا ہے, اس کو ترقی دینے کے لیے, اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے, اس کو اپنے قریب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دیے, اور قیامت تک اللہ کے دوست آئیں گے جو مجھے ہمیں سمجھائیں گے اللہ کا راستہ اللہ. اور تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے میں نے تو ٹھیک ہے تمہارے کر لو سود کھا لو, لیکن تمہارا حشر یہ ہوگا. یہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حشر بتا دیا ہے. تو اب ہم عورتوں میں اگر کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے اور سودی کے پہ پیسے لے رہا ہے تو وہ آج بند کر دے بالکل. اللہ کہتا ہے کہ لیکن اب انہوں نے اللہ سے آرگو کر رہے ہیں, ہمیں اللہ سے آرگو کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے. اب اللہ سے آرگو ذالک بانہم قالو, کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب خرید و فروخت, ظاہر ہے ہم نے کوئی چیز خریدی ہے بیچی ہے اس میں منافع آیا, اسی طرح سیم ہم نے کسی کو پیسے دیے اس کا منافع آیا تو سیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سیم کیوں, جب میں نے منع کر دیا, میری مرضی یہ ہے کہ میں نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا, اب تمہیں میری مرضی کرنے, میری منشا یہ ہے کہ تم ایسا نہیں کرو کہ تمہیں نقصان ہوگا. پھر اللہ کہتا ہے فمن جاؤ معاوضہ تم. دوسری چیز ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو زندگی جس خیالات میں جس طریقے میں جس اس سوچ میں اور جس عمل میں گزارتے ہیں اسی طرح ہم قبر میں جائیں گے, موت بھی اسی پہ رہے گی. اب قبر میں جب جائیں گے تو اگر ہم نے سودی نظام سود لیا ہے, سود کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, تو قبر میں تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا, کیونکہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جب مومن اب کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے, تو نماز کا پابند ہوتا ہے, تو جب وہ قبر کے اندر, میں اس کے سمجھا رہی ہوں, جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ شام عصر کا ٹائم ہے, تو وہ فوراً جب فرشتے سوال جواب کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہٹو ہٹو ہٹو, وہ مومن ان سے کہتے ہیں ہٹو 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 میری نماز کا ٹائم ہے. لیکن جو سود کھانے والے اللہ کے نافرمان قبر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تو پھر وہی حشر ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا, جو اعمال ہیں اسی طرح کے اس کے فرشتے ہوں گے, उसी तरह का उनके साथ सुलूक होगा। तो अल्लाह ताला मुझसे कह रहा है कि नहीं, अब मैंने तुम्हें कह दिया कि सूद नहीं खाना, तो बस नहीं खाना। अच्छा, सूद ये जो निज़ाम है उसमें सवाए, अब यहाँ इस वक्त सारे मुल्कों में सूदी निज़ाम है, बताए कहाँ अमन अमान है? सब जगह दंगा फसाद है। अगर मुसलमानों में तो दंगा फसाद और सब कुछ है, लेकिन जो यूरोप है, अमेरिका है, अमेरिका कितना अरसा हो गया सवाए लोगों को, मुसलमानों को तबाह करने, और उसमें लगा हुआ है, लड़ाई झगड़ों में लगा हुआ है, वो मुसलमानों को तबाह कर रहा है, तो क्या वो खुद नहीं तबाह होगा? खुद तबाह नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा। इसी तरह यूरोप है, अब अमेरिका और रशिया की लड़ाई कितनी, तीन जंगें अजीमें हुई हैं, किस पे हुई हैं? ये इसी वजह से हुई हैं कि वो निज़ाम जो है वो नहीं होता उसमें, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत नहीं डालता उसमें। एक तो सूदी निज़ाम जो सूद ले रहा है वो बखील है, वो बखील है, वो कंजूस है, वो संग दिल है, वो बेरहम है, वो किसी का ख्याल नहीं करता। इसी तरह एक फ़र्द, इसी तरह कौम है, इसलिए तो किसी का ख्याल नहीं करती, बस हर एक को अपने मफाद की दुनिया की पड़ी हुई होती है। बाहर हाय दुनिया के पीछे पड़े हुए, किस तरीके से दुनिया को कमा लूँ, किस तरीके से पैसे को कमा लूँ। यानी हम, आपने देखा होगा जो ये जो होते हैं बात दुनियादार लोग जो होते हैं, उनकी हालत क्या होती है? हर वक्त ये कर, ये ऐसे करना, ये ऐसे कमाना, सारा दिन यही सोचे। अब ये क्या है? ये पागलपना है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने मुझे तो इसलिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने तो मुझे अपने को पहचानने के लिए, अपनी रजा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब जब मैं मकसद ज़िंदगी अल्लाह बना लूँगा, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल टोटली अलग हो जाएगी आम दुनियादार लोगों से। ज़मीन आसमान का मेरे अंदर फ़र्क आ जाएगा, मेरे अखलाक में, मेरे बातचीत में, मेरे रवैयों में, हर चीज़ में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरे अल्लाह से कनेक्ट हो गई, अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक मैं अब ज़िंदगी गुजारने लगी। अल्लाह भी यही चाहता, अल्लाह ताला ने पैदा ही मुझे अपने लिए किया। तो अब अल्लाह कह रहा है कि मैंने ख़रीद फ़रोख़ को हलाल कर दिया है, ये मेरा मंशा है, मैंने तुम्हें बता दिया, और सूद को हराम कर दिया, अब तुम्हें इससे रुकना होगा। अल्लाह कहता है फ़मन जाओ मोइज़ा तुम मेरे रब्बे ही फन तहा, जिसको मेरी बात पहुंच गई, नसीहत पहुंच गई, अब वो रुक गया। यानी पहले सूदी काम करता था, सूद लेता था, लेकिन जब उसको अल्लाह का हुक्म पता चला तो वो रुक गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है मेरे जहन में कि मुसलमानों को मालूम नहीं है हम रुक रहे हैं, कौन सी हुकूमत है इस पे के जो सूदी निज़ाम में हिस्सा नहीं ले रही? सारा निज़ाम सूदी है हमारा, मुसलमानों का, हमारा जो ख़ास मुसलमान मुल्क हैं सब सूद में। तो इसका क्या मतलब है कि किस तरीके से हम अल्लाह की नसीहत को जानेंगे? जब तक हम अल्लाह से कनेक्शन नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ रुख नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम अलग अल्लाह से कनेक्ट नहीं हो सकते। हमें अल्लाह की नसीहत समझ में नहीं आएगी, हम तक अल्लाह की कानों में तो हमारे आ जाएगी, लेकिन हमारे दिल और दिमाग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारा दिल और दिमाग कबूल नहीं करेगा, वो देख लें हमारे मुसलमानों के दिल और दिमाग ने कौन सा कबूल किया हुआ है, किसने कोशिश की है कि सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाए? पाकिस्तान में कोई कोशिश कर रहा है? कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई कोशिश कर रहा है? कोई जलूस वगैरह सब निकाल? नहीं। क्यों? कि इसलिए कि हम अल्लाह से कनेक्ट नहीं है, अल्लाह और रसूल को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, चाहे वो कौमों के लिहाज से है, क्या वो इनफरादी लिहाज से। अब तो औरतें भी सूद पे पैसे लेने लगी हैं। अच्छा, अल्लाह कहता है जब अगर उसको मेरी नसीहत समझ में आ गई, मेरी बात उसको समझ में आ गई, तो उसे फौरन रुक जाना चाहिए। फलहू मा सलफ, जो पहले उस ने किया या कर रही थी वो ख़त्म, मतलब उसको मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन एक नुक्ता इसमें है, वो क्या है? वह अमरहु इलल्लाह, अब उसके तमाम मामलात अल्लाह के पास हैं। अब ये आगे अल्लाह ताला बताएगा इस आयत का, क्या वह अमरहु इलल्लाह, अब ये मामला अल्लाह और उस बंदे के दरमियान जिस जो अब सूद से रुक गया है, लेकिन उसके पास सूदी पैसे हैं। अब उस सूदी पैसों के मुतालिक अल्लाह ताला हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। तो अल्लाह कहता है लेकिन वो लोग, वमन आदा फौलाए का साबुन नार, जो जानते बूझते इसको नहीं छोड़ रहे और अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे तो वो दोजख में जाएंगे। इस वक्त मुझे बता दें, हम मुसलमान दोजख में नहीं जाएंगे, कौन दोजख से बचेगा? जहाँ ये नुक्ता आप याद रखें, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब ये तमाम जो इस्लामी मुल्क हैं, सल्तनत इस्लाम इस्लाम की है, अगर वो लोग कर रहे हैं, हुकूमतें कर रही हैं, सब दोजख में जाएंगे, नहीं अल्लाह ताला। लेकिन एक नॉन मुस्लिम हुकूमत है, वहाँ सूदी निज़ाम है, तो वहाँ जो मुसलमान हैं वो अपने को वहाँ के सूदी निज़ाम से जितनी हद तक कोशिश करें अपने को बचाएं। अब जैसे क्रेडिट कार्ड है, ये भी एक सूद है, जुआ है, ये भी एक जुआ है, और वहाँ की जो स्कीमें हैं, आप लोग बाहर रहते हैं, वो सब, तो आप लोगों को अपने से इसको बचाना होगा कि आपको उसमें रहें। क्रेडिट कार्ड कैसे सूद है? शायद सूद ऐसा है कि आपने 10,000 की खरीदो फरोख की, आपके पास जब बिल आएगा तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये दे दो, 10,000 के खरीदे ज़्यादा से ज़्यादा 200, आप खुश हो गए कि हमें 200 रुपये का बिल आया है, आपने ख़रीदारी 10,000 की किया है, बिल आपके पीछे आया 200, तो जो बाकी बचे आपने अगर उसको उस मियाद में पूरा नहीं किया तो वो उस पे सूद लगना शुरू हो जाएगा। तो इस नुक्ते को आप लोग समझें और देखें कि आप सूदी जितना बच सकते हैं बाहर मुल्कों में, नॉन मुस्लिम मुल्कों में सूदी निज़ाम से बचने की कोशिश करें। अल्लाह कह रहा है ये तमाम लोग दोजख में जाएंगे, हम फिया खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितनी इस्लामी मुल्कें हैं, मुल्क है और जितने सरबरा हैं, ये सब दोजख में जाएंगे, क्योंकि जो सरबरा है उसको पास पावर है, अल्लाह ताला ने उसको पावर दी है, उसको चाहिए कि वो इस निज़ाम को ख़त्म करे। कौन ख़त्म कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अब हम से अगर अवाम की सतह पर आ जाएँ तो हमें आपस में एक दूसरे से सूदी निज़ाम का लेन देन नहीं करना, हमें बैंकों की तरफ, वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो सूद है, उसकी तरफ हमें नहीं जाना, हमें कोई ऐसा कारोबार, कोई ऐसी स्कीम नहीं लेनी जिसकी वजह से हमें सूद आता हो। ये अब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस निज़ाम का, अल्लाह की मंशा को पूरा करने की। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार।